तारा परी अमन का हाथ तो पकड़ चुकी थी, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाई थी, जिसकी वजह से वो उदास थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अमन असल में है कौन। क्यों वो अमन के बारे कुछ नहीं पढ़ पाई या पता लगा पाई, बस यही बात उसे परेशान किए जा रही थी। और तभी उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की बेहोश हो जाती है। तारा परी उसे अस्पताल लेकर जाना चाहती है, लेकिन अमन मना कर देता है। न जाने क्यों वो गुस्सा हो जाता है, जिससे तारा परी भड़क जाती है और उसे काफी खरी खोटी सुना देती है। डॉक्टर उस लड़की का चेकअप करते हैं और बता देते हैं कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर उस लड़की के माँ बाप काफी ज्यादा परेशान और शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई थी। सब लोग उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़की केवल इतना ही कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है। तब तारा परी उस लड़की का हाथ पकड़ती है और जैसे जैसे वो उस लड़की के बारे में जानने लगती है, वैसे वैसे तारा परी की आंखों से भी आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तभी अमन राठौर एक बार और उस लड़की को ताना मारते हैं और उस लड़की के पिता से कहते हैं, देख लिया आपने, इसीलिए कहते हैं जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर औरतों पर। अब उस लड़की के पिता और कटी छिली बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अचानक से वो उठे और उन्होंने खड़े होकर अपनी बेटी का गला दबाना शुरू कर दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी माँ अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त उसके पिता ज्यादा गुस्से में थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तारा परी अचानक हुए उस लड़की पर हमले से परेशान हो गई। उसे समझ ही नहीं आया वो क्या करे। उसने एक नज़र अमन की ओर देखा, जो आराम से हाथ बांधकर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। तारा परी का गुस्सा आसमान छू चुका था। उसने एक तेज आवाज से उस लड़की के पिता को रोका और उन्हें उस लड़की से दूर धकेल दिया। और जो बाकी सब उस लड़ाई और उस लड़की के साथ हो रही मारपीट का मजा ले रहे थे, तारा परी ने एक झटके से उन्हें चुप करा दिया और तेज आवाज में उस लड़की के पिता से बोली, आपको क्या जरा से भी अक्ल नहीं है? एक आदमी ने आपको बहलाया फुसलाया और आप उसकी बातों में आ गए और अपनी बेटी को मारने पर उतारू हो गए। तारा परी ने अमन की ओर देखते हुए कहा। अमन गहरी गहरी नजरों से तारा परी को ही देख रहा था। तब उसके पिता फूट फूट कर रो दिए। तारा परी अमन के सामने जाकर खड़ी हो गई। अमन साहब, आप तो बॉस है ना इस कंपनी के, तो फिर अपनी ही कंपनी की एम्प्लॉय को लेकर आपकी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? एक तो आपके ऑफिस की लड़की के साथ गलत हुआ है और आप उल्टा उसी को ब्लेम कर रहे हैं। आखिर थोड़ी बहुत इंसानियत है या नहीं आपके अंदर? अमन को भी गुस्सा आ गया था। वो इस तरह से सबके सामने, वो भी एक औरत के हाथों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो एक झटके से बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैंने कहा था इस लड़की को प्रेग्नेंट होने के लिए? और ये मेरा ऑफिस है और यहाँ जो ये लोग काम करते हैं फी में नहीं करते, अच्छी खासी मोटी रकम देता हूँ। और ऑफिस के बाहर ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ सोते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? अमन ने जैसे अपना पल्ला झाड़ा था। अमन की बात सुनकर तारा परी और चिढ़ गई थी और तेज आवाज में बोली, मिस्टर अमन राठौर, आपकी सोच इतनी घटिया होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। इस ऑफिस में काम करने वाले लोग जिम्मेदारी हैं आपकी, तो आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? और इस लड़की के साथ आपके खुद के ऑफिस में ही गलत हुआ है। जैसे ही तारा परी ने ये कहा, वहां मौजूद सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और तब अमित आगे आया और बोला, तारा जी, क्या कहा आपने, इस ऑफिस में गलत हुआ है, हम कुछ समझे नहीं। तब तारा परी उस लड़की के पास गई और उसका हाथ अपने हाथ में थामकर बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बताओ इन सबको असल में हुआ क्या था। तारा परी ने उस लड़की को हिम्मत दी, लेकिन वो लड़की केवल रोती रही और कुछ बोल नहीं पाई। तब अमन एक बार फिर बोल पड़ा, मैंने कहा था ना तुमसे, इसी लड़की की गलती है, मेरे ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, इसी ने जरूर बाहर किसी के साथ मुंह काला किया है। तारा परी अमन की बात सुनकर काफी सदमे में थी और सोच रही थी, भला ये इंसान रहमदिल नेक दिल इंसान कैसे हो सकता था, जरूर उसका पत्थर गलत जगह चमका था। तब तारा परी ने खुद को संभाला और बोली, मिस्टर अमन राठौर, आप अपनी जुबान को लगाम दे, मैंने कहा ना इस लड़की की कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपके ऑफिस में काम करने वाले एक आदमी की है। तारा परी ने एक और इल्जाम लगाया था। सब ऑफिस के लोग एक बार फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। तब उनमें से एक लड़का अमन से बोला, सर ये कल की आई लड़की क्या बकवास किए जा रही है, ये तो हम लोगों को ही इस केस में फंसा रही है, हम लोग इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ और आज इस लड़की का पहला ही दिन है और आज के ही दिन इसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब तो अमन का सब्र भी जवाब दे चुका था और उसने कहा, मिस तारा, आप एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर आज आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये लड़की बेकसूर है और आपने जो मेरे ऑफिस के स्टाफ पर इल्जाम लगाया है कि इस लड़की की हालत का जिम्मेदार मेरे ही ऑफिस से कोई है और सारी गलती उसकी है, इस लड़की की कोई गलती नहीं थी, तो आपको साबित करना होगा। मैं आपको केवल एक घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आज आपका ऑफिस का पहला दिन ही आखिरी दिन होगा। इसका मतलब साफ है, अगर आप इस लड़की को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो आपको इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर अमन अपने केबिन में चला गया और उसके पीछे पीछे अमित भी चला गया और अमन से बोला, ये सब क्या है ब्रो, तुमने जानबूझकर तारा को ये चैलेंज दिया है ताकि तुम उसे जॉब से निकाल सको, वैसे भी वो तो तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं थी। अमन जस्ट शट अप, अमित जस्ट शट अप, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दिया उसने किस तरह से सबके सामने मेरी बेइज्जती की है और तुम चाहते हो मैं उसे यहाँ अपने ही ऑफिस में बर्दाश्त करता रहूं। उसने सबके सामने इल्जाम लगाया है, अब उसे साबित तो करना ही होगा। ऐसा कहकर अमन ने अमित को अपने केबिन से जाने के लिए कह दिया। वहीं तारा उस लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि वो उसका नाम बता दे जिसने उसके साथ गलत किया है ताकि उसे सजा मिल सके और वो लड़की बेगुनाह साबित हो सके।
लेकिन तारापरी के हजार बार समझाने के बावजूद वो लड़की हिम्मत नहीं कर पाई, बस रोती रही। तभी उस लड़की को किसी ने फोन किया और फोन सुनकर वो लड़की और ज्यादा घबरा गई। उसकी घबराहट देखकर तारापरी समझ गई कि जरूर ये कॉल उसके गुनाहगार की थी। तारापरी ने उस लड़की का हाथ पकड़कर तसल्ली दी और साथ साथ उसके मन की सारी बात सुन ली। और अब तारापरी समझ चुकी थी कि उसे क्या करना था। एक घंटा पूरा होने वाला था, केवल 20 मिनट ही बचे थे टाइम पूरा होने के। सो तारापरी को जो करना था जल्द से जल्द करना था। तारापरी उस लड़की की माँ को एक साइड में ले गई और पूरे 10 मिनट तक उन्हें कुछ बताती और समझाती रहीं।
तारापरी की बात सुनकर उस लड़की की माँ अपने बेटी के पास गई और उसे समझाने लगी कि वो उस आदमी का नाम बताए जिसने ये सब उसके साथ किया है, और वो किसी भी चीज के बारे में ज्यादा न सोचे, उसकी माँ है उसके साथ। वो लड़की अपनी माँ के समझाने पर भी कुछ नहीं बोली, केवल गर्दन नीचे किए रोती रहीं। अब एक घंटा पूरा हो चुका था। एक बार फिर सारा स्टाफ वहां जमा था। तब अमन आया और सीधा तारापरी से बोला, हाँ तो वकील मैडम, आपके क्लाइंट ने कुछ बताया या नहीं, या हम लोग केस खत्म सोचें? अमन ने तारापरी के मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, और अमन की बात सुनकर सब तेज तेज हंसने लगे। तभी तारापरी ने एक नज़र उस लड़की की ओर देखा, लेकिन उस लड़की ने अपनी गर्दन झुका ली। अब तारापरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। सो तब तारापरी उठी और अमन राठौड़ के स्टाफ में काम करने वाले अमन राठौड़ के एक बॉडीगार्ड, जिस पर तारापरी रिक्शा वाले को मारने के जुर्म में हाथ उठा चुकी थी, उस गार्ड का हाथ पकड़कर उसने सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया और तेज आवाज में बोली, मिस्टर अमन राठौड़, ये रहा मुजरिम।